ओम शांति। एकदम फ्रेश महसूस होता है जब सभी एक ही आवाज में बोलते हैं। तो आज हमारा, वैसे तो आप अपने ही घर में घूम रहे हैं ऐसा ही महसूस हो रहा है, लेकिन फिर भी एक प्रथा है ऑफिशियली वेलकम करने की, जो तिलक लगाकर आपका सभी ने अभिवादन किया। बाकी मैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय, जो एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था के रूप में आज कार्यरत है और देश विदेश में अनेक आत्माओं को लाभान्वित कर रही है, अपने मूल्यनिष्ठ समाज को कैसे हम स्थापित कर सके, कहाँ से 1936 में ये छोटा सा बीज पड़ा था और आज 140 कंट्रीज से भी ज्यादा और 9500 सेंटर्स और भी सब सेंटर्स, पाठशालाएं आदि, अलग अलग रूप से विश्व विख्यात ये संस्था आज एक वट वृक्ष का रूप ले चुकी है। और ऐसी ही संस्था में आज उसके मुख्यालय में अरावली पर्वत के मध्य सुंदर वातावरण में, जिस राजस्थान को सोच भी नहीं सकता कि कोई यहाँ पर हरियाली होगी, और यहाँ आप आसपास देख रहे हैं, सुबह से मैं आप लोगों से भी सुन रही हूँ, इतना फ्रेश एयर है, इतने अच्छे प्लांट्स हैं और इतने अच्छे फ्लावर्स की खुशबू है, और वो हमें भी खुशबूदार बना रहे हैं। ऐसे प्रांगण में आप सभी का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। जी हाँ, ये तो भारतीय संस्कृति है, कहते हैं जब बड़े हमारे मध्य आते हैं तो उनका आशीर्वाद उनके मौजूदगी से ही प्राप्त हो जाता है। तो इस मंच की शोभा बढ़ाने के लिए हमारे बीच में आदरणीय चक्रधारी दीदी जी तो पहुंच ही चुके हैं, मैं आदरणीय प्रभा दीदी जी को भी मंच पर आमंत्रित करती हूँ, आदरणीय रजनी दीदी जी को भी मंच पर आमंत्रित करती हूँ। हम सभी तालियों से स्वागत करेंगे जब तक बड़े आते हैं हमारे मध्य अपनी खुशी जाहिर करने के लिए। हमको बहुत सुंदर ये ताली की एक्सरसाइज दी गई है। मैं बहनों से अनुरोध करूंगी, रिमी बहन, शिखा बहन, हमारे बड़ों का तिलक लगाकर और बैजेस से, पुष्प से स्वागत करेंगे। हाथ भले ही इनका होगा लेकिन साथ किसका होगा? हमारा होगा। इनके हाथ हैं, हमारे ताल हैं, बस ऐसे ही हम अपने दिल के उद्गार बड़ों तक एक सम्मान के रूप में पहुंचा रहे हैं। इस पुष्प में जितने भी गुच्छा है ये पूरा, और सबसे बड़ी खूबी ये हमारे यहीं के आंगन के हैं, है ना, यहाँ के ही आंगन के, और ऐसे पुष्प हम सबको भी एक रहना सिखाते हैं। मैं, हमारे बीच में कुमारी हर्षिता है, बहुत ही सुंदर, आप सबको देखकर और इस वातावरण को देखकर ऐसी महसूसता आती है, मैं आपकी तरफ से बोल रही हूँ, जिस भी व्हाइट कपड़ों में चलते हुए आसपास हम देखते हैं, आपको कैसे लगते हैं? वो कैसे लग रहे हैं? फरिश्ते लगते हैं ना, ज्यादातर ऐसी ड्रेस दिखाई जाती है। तो इन फरिश्तों की महफिल में आपका स्वागत करने कुमारी हर्षिता, जो राजयोग का अभ्यास करती हैं, प्रोफेशनली टीचिंग भी देती हैं और बहुत ही समय से ब्रह्मा कुमारी इसके संपर्क में है, आज आपका स्वागत करने आपके मध्य है। तालियों से स्वागत।
जमीन पे उतरे तारे हैं, ये उतरे तारे कितने प्यारे, कितने प्यारे हैं। ये फरिश्ते जो जमीन पर उतरे तारे हैं। सबसे पहले इन पे भगवान की नजर पड़ी, सबसे पहले इन पे भगवान की नजर पड़ी। मेरी आशाओं के दीपक तुमसे ही उम्मीद बड़ी। जाने कितनी बार जन्नत ये तारे हैं। ये फरिश्ते जो जमीन पे उतरे तारे हैं। ये उतरे तारे कितने प्यारे हैं। ये फरिश्ते जो जमीन पे उतरे तारे हैं। सबका मन मुस्काएगा, खुशियों भरा जीवन जहां सबका मन मुस्काएगा। कहते हैं जन्नत जिसे वो जमी पर आएगा। नैनो से नव युग के, नैनो से नव युग के छलकते इशारे हैं। ये फरिश्ते जो जमीन पे उतरे तारे हैं। ये उतरे तारे कितने प्यारे हैं। ये फरिश्ते जो जमीन पे उतरे तारे हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद कुमारी हर्षिता का। स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन का लक्ष्य इस विद्यालय का सदा ही रहा है। इस विद्यालय की यही एक खासियत है कि इस विद्यालय में जो पढ़ाई पढ़ाई जाती है वहाँ धर्म भेद, जाति भेद, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है। एक ही क्लास में दादा भी है तो पोता भी है, टीचर भी बैठी हैं प्रोफेशनली तो स्टूडेंट भी हैं। क्योंकि हम सभी अपने आप को अपने मूल से जोड़ते हैं। शरीर की आयु या शरीर की शिक्षाओं की मर्यादा व बाधाओं से परे हमें हमसे जुड़ना सिखाने वाला ये ऐसा शिक्षाप्रद विद्यालय है। और ऐसे विद्यालय में आप सबको पहुंचाने के जो निमित्त बनी वो है हमारी प्यारी अदिति बहन। तो आपका स्वागत तिलक से भी हो गया, आपका स्वागत नृत्य द्वारा भी हो गया। अभी अदिति बहन अपने शब्दों द्वारा भी आपका स्वागत करना चाहती हैं। मैं अदिति बहन को मंच पे बुलाऊंगी।
ओम शांति। मन से तो आपका स्वागत तब से हम कर रहे हैं जब से आपने इस निमंत्रण को स्वीकार किया है। स- सच में हर दिन इस सीन को मैं इमर्ज कर रही थी कि आप जब वहां से चलने से लेकर यहाँ पहुंचेंगे, हम आपको यहाँ रिसीव करेंगे परमात्मा के सुंदर घर में। और मुझे लगता है कि आप शायद सोचकर आए होंगे बहुत सी बातें कि वहां जा रहे हैं, हम अकेले हैं, कैसा रहेगा, पहली बार जा रहे हैं, लेकिन आते ही शायद आपको एक अपनेपन की फीलिंग हुई होगी, क्योंकि भगवान का घर हम सब बच्चों का घर है। हुई सबको फीलिंग, है ना? है ना? तो आपका सभी का परमात्मा के इस घर में बहुत बहुत वेलकम है। और हम सब मिलकर सबसे पहले उस परमपिता परमात्मा का आवाहन भी करते हैं, उनका स्वागत भी करते हैं, जिनके आगे हमने तो सिर्फ एक संकल्प रचा था, मन में एक इच्छा थी, एक संकल्प परमात्मा को दिया, जो आज साकार रूप से हम देख रहे हैं आप सबकी प्रेजेंस के द्वारा, हमारी दीदियों के प्रेजेंस के द्वारा। तो परमात्मा का सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है इस सभा में। सुंदर शब्द आज सभी के प्रति मन में आ रहे हैं, खुशियों की लहर आए, सुकून की बंसी बजे। खुशियों की लहर आए, सुकून की बंसी बजे। आज आप सबका यहाँ आना ऐसे लगे जैसे परमात्मा की बगिया सुंदर फूलों से सजे, सुंदर फूलों से सजे। तो सबसे पहले परमात्मा के स्वागत के बाद हम यहाँ अपने मंच पे आसीन हमारी सम्मानित दीदियाँ, उनका हम वेलकम करते हैं। आदरणीय प्रभा दीदी जी, जो इस जिस प्रांगण को आप सुबह से एक्सप्लोर कर रहे हैं, जिसकी इतनी महिमा गा रहे हैं, आप इसकी एडिशनल डायरेक्टर हैं, यहाँ की सारी देख रेख आप करते हैं, है ना? तो जो हम यहाँ पर इतनी मेंटेनेंस देख रहे हैं आदरणीय सुदेश दीदी के साथ, प्रभा दीदी इस पूरे कैंपस को देखते हैं, तो हम आपका दीदी बहुत बहुत वेलकम करते हैं। साथ ही हम आदरणीय चक्रधारी दीदी, जो खास दिल्ली से आप सबसे मिलने के लिए आई हैं, हम आपका भी दीदी बहुत बहुत वेलकम करते हैं। आज सुबह ही दीदी आप में से बहुतों के साथ ही पहुंचे हैं और खास इस रिट्रीट के लिए ही आए हैं। और बहुत बड़ा हमारा सौभाग्य है, हमारी लॉटरी लग गई, क्योंकि रजनी दीदी जो जापान की रीजनल कोऑर्डिनेटर हैं, जापान में ब्रह्मा कुमारीज की, आपको बताया ही था कि ब्रह्मा कुमारीज की 140 देशों में सेवाएं चलती हैं पूरे विश्व भर में, तो जापान में जितनी भी सेवाएं चलती हैं सब आपके डायरेक्शन में चलती हैं। तो हमें आज आपकी भी ब्लेसिंग्स मिलेंगी, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और आप सबके बिना तो ये महफिल सज नहीं सकती, है ना? तो दिल से बार बार आपका बहुत बहुत वेलकम, स्वागत, अभिनंदन, फील एट होम। दो शब्दों में मैं एक बात और कहूंगी कि कई मुझे फोन पे भी पूछ रहे थे, आज सुबह ब्रेकफास्ट पे भी पूछ रहे थे कि यहाँ ये सब रखने का पर्पस क्या है, आपने क्यों रखा? यहाँ कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, लेकिन आपने जो भी आपके संपर्क वाले थे, तो जो चाहे प्रोफेशनल संपर्क रखते हैं या उसके वजह से, या फैमिली मेंबर्स हैं, फ्रेंड सर्कल है, इसका पर्पस क्या है? ये पर्पस है कि हम यहाँ आके जुड़ जाएं इस संस्था से? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि मुझे आज आप पहली बार आए हैं। जब 2009 में मैं पहली बार यहाँ आई थी, तो मैं कॉन्फ्रेंस अटेंड करने आई थी। तो जब मैं यहाँ पर आई, उस समय ये स्मार्टफोन्स तो होते नहीं थे, नॉर्मल फोन होता था, आप मैसेज कर सकते थे, फोन मिला सकते थे। दो छोटे छोटे बच्चे थे मेरे घर पे, किसी प्रोग्राम में कुछ लेक्चर देने के लिए भी आई थी और अटेंड करने भी आई थी, तो मैं अकेली आई थी यहाँ पर। और एक मदर का कहें, लेडी ऑफ द हाउस का कहें, तो हमेशा घर परिवार में ही वो सब कुछ करती रहती है, अपने लिए शायद कभी समय निकालती नहीं है। ये उसको लगता है ये मैं जो परिवार को दे रही हूँ, मैं मेरा ही समय है, तो ऐसा ही मुझे लगता था। तो जब मैं यहाँ पहली बार आई और मैं इस एम्बियंस में, एक घंटा ही अभी हुआ था, रात का टाइम था, मैं लैम्प पोस्ट के नीचे बैठी थी, और जो मुझे लेकर आए थे उन्होंने कहा कि आज तो रात हो गई, कल हम आपको कहीं घुमाने भी लेके जाएंगे, माउंट आबू में बहुत सुंदर सुंदर जगह है घूमने की। तो मेरे को एक ऐसा लगा उस लैम्प पोस्ट के नीचे, मतलब जब मैं अकेली बैठी थी, तो एक जैसे कहते हैं कि एक एहसास हुआ कि आज मैं पहली बार अपने से मिल रही हूँ। कोई काम नहीं है, कोई बच्चों से कुछ, बच्चों का नहीं करना, परिवार का नहीं करना, और मैं बिल्कुल जैसे मेरे सालों से शायद मैं अपने आप को समय नहीं दिया था, तो वो मुझे रियलाइजेशन ऐसी हुई कि मैं किससे मिल रही हूँ, कौन हूँ मैं, और बहुत अच्छी एक पीसफुल फीलिंग आई, वो सुकून सा मिला जो मुझे कभी दिल्ली में नहीं मिला। दो लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सब अच्छा चल रहा था, लेकिन एक अलग सी फीलिंग हुई और एक जैसे अपने अंदर खोज शुरू हुई कि ये क्या, मतलब मैं उसको शायद शब्दों में नहीं समझा पाऊंगी, हो सकता है आपको भी किसी को ऐसी फीलिंग हो। तो वो जब मैंने एहसास किया तो मैंने उनसे कहा मुझे कहीं नहीं घूमने जाना, मुझे तो यहाँ ही इतनी नेचर के साथ साथ मुझे अपनी नेचर की रिफ्लेक्शन जो लग रही है, उसकी ब्यूटी जो मैं समझ पा रही हूँ, जो शायद मैं कभी इससे पहले नहीं जानती थी। और वो 3 दिन का जो मेरा सफर था, मैं कहूंगी कि वो लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था। तो मन में ये होता है कि जब हमें कुछ मिलता है तो वी वॉन्ट टू शेयर विद आर नियर एंड डियर वंस। तो आप सभी हमारे परिवार का हिस्सा हैं, है ना, आप सबके साथ है। मैं कहूंगी शरण मैम हमारे सामने बैठी हैं, आपकी पटना में चेन ऑफ स्कूल्स हैं सेंट कैरेंस के नाम से, आपके से हमारा 2013 से संबंध है, इतना गहरा प्यार का संबंध है। मैंने जैसे ही इन्हें फोन किया एंड शी एक्सेप्टेड। हमारे सुरजीत सर जी आए हुए हैं रुद्रपुर से, DPS के चेयरपर्सन, आप सबके साथ हैं, हम जुड़े प्रोफेशनली हैं लेकिन आप सब हमारे परिवार का हिस्सा हैं। कई US से भी आए हैं, दुबई से आने वाले हैं, और बहुत डिफरेंट स्टेट से, बैंगलोर, कर्नाटका, जहां जहां हम गए ऐसा लगा एक परिवार बनाते चले गए। हमारे बीच में मिली ऐश्वर्या, पब्लिशर पेंगुइन रैंडम हाउस भी बैठे हैं, उन्होंने भी एकदम से एक्सेप्ट किया इसको। तो मैं एक एक का नाम तो क्या लूं, लेकिन हर एक दिल से इतना प्यारा है मुझे, इतना क्लोज है कि मैं सभी का आपका वेलकम करती हूं। मैं यहाँ कहूंगी हम सब एक परिवार हैं। इन अगले 3 दिनों में, एक दिन तो ऑलमोस्ट आपका गया लेकिन अभी भी बहुत कुछ आज एक्सप्लोर करने में, हम सब साथ हैं, लेकिन साथ होते हुए एक दूसरे के साथ एंजॉय करते हुए खुद को नहीं भूलें, अंदर एक सेल्फ रिफ्लेक्शन चलता रहे। तो आप देखेंगे कि जब आप संडे को वापस जाएंगे तो आप कुछ नहीं, बिल्कुल नए बन के जाएंगे, जो आप ही के अंदर था, लेकिन यू वुड बी एबल टू एक्सप्लोर दैट इन अ बेटर वे। थैंक यू, वेलकम ऑल ऑफ यू। तो कोई भी चीज का शुभ आरंभ हम, हमारी भारतीय संस्कृति है, कैंडल लाइटिंग से करते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि मंच पे और हमारी सभी दीदियां स्टेज पर जो बैठे हैं वो भी कैंडल लाइटिंग के लिए आए, और हमारे ऑडियंस में से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी मिली ऐश्वर्या जी आप स्टेज पर आए, सुजीत सिंह जी आप स्टेज पर आए, गुरमीत सिंह जी आइए स्टेज पर आइए, शरण मैम, हम सब भी मन से भी और अपने मोबाइल के थ्रू भी सम्मिलित होंगे। हम सबके पास इस मोबाइल में टॉर्च है, उसको खोल लेंगे और स्थूल के साथ साथ मन का दीपक भी जगाएंगे।
शुभ संकल्पों के दीप जलाएं, अपने अपने मन में। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं, अपने अपने मन में। जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं, बदलने वाला राजयोग का मार्ग यही है, सहज सरल निराला, दिव्यता की बन जाए मूरत।
दीपक प्रज्वलन, ये स्थूल दीपक नहीं है, वास्तव में हम सबकी आशाओं का दीपक है, जो आज हम सब ने उजागर किया है, जागृत किया है, अपने मन में ये आशाएं, ये शुभकामनाएं जागृत करी हैं कि आज हम जिस संकल्प को स्टार्ट करने जा रहे हैं, विधिवत जिसका शुभारंभ करने जा रहे हैं, ये अवश्य ही हमारे जीवन में परिवर्तनशील रहेगा भी, और वो परिवर्तन हमारे कर्म में अनेक आत्माओं को भी प्रदर्शित करेगा। जैसे दीपक अंधकार को मिटा देता है, ये आशाओं का दीपक हमारे सब निराशाओं को मिटाने के एक जरिया बनेगा। स्वीकार करते हैं ना इस बात को? चलिए अब हम अपने बड़ों से शुभकामनाएं लेते हैं, क्योंकि इस कार्यक्रम का जो कोई भी संकल्प रहा हो, लेकिन मूल आधार एक बहाना होता है बड़ों की शुभकामनाएं दुआएं लेने का। चाहे वो कोई भी त्योहार, जन्मदिन आदि आता है, बड़ों के संपर्क में पहुंचते हैं, दुआएं मिलती हैं। एक छोटे बच्चे को कोई चलते फिरते ऑल द बेस्ट भी बोल देता है तो भी उसको लगता है आज बढ़िया होगा मेरा पेपर, क्योंकि आज ऑल द बेस्ट बोल दिया है। और यहाँ तो तीन महारथी हमारे मध्य हैं, त्रिमूर्ति दीदियों का हमको आशीर्वचन प्राप्त होने जा रहा है। मैं सर्वप्रथम आदरणीय प्रभा दीदी जी से कहूंगी। आदरणीय प्रभा दीदी जी, जिनके विषय में आप सुन ही रहे थे कि आप इस कैंपस की एडिशनल जॉइंट चीफ हैं, यहाँ पर सारा मैनेजमेंट जो भी है आपके ही निर्देशन से होता है। आपने मात्र 13 वर्ष की आयु से ही स्पिरिचुअल पाथ को चूज किया और अपने आप को ऐसी ईश्वरीय सेवाओं में डेडिकेट किया। पिछले 60 वर्षों से भी अधिक समय से आप अपने आध्यात्मिक सेवाओं को यहाँ ही नहीं, गुजरात में भरूच सेवा केंद्र और उसके कनेक्शन में और भी बहुत सेवा केंद्र हैं, उन सब का भी संचालन और यूथ में भी, चाहे किसी भी पीढ़ी के बच्चे हों, उनके अंदर रैली निकालना, उमंग भरना, बड़े बड़े प्रोग्राम्स करना, उसका उमंग दिलाना, जैसे आप खुद उत्साहित रहती हैं, आप अपने संपर्क में आई हुई आत्माओं को भी ऐसे उत्साह से भर देती हैं। आप गंभीरता और शांति का एकदम प्रैक्टिकल प्रतिमूर्ति हैं। आपको देखकर हमको महसूस होता है कि आपकी आंखें अनेक आत्माओं को शुभकामनाएं देने के लिए सदा ही तैयार रहती हैं। जैसे हम देवियों से, मूर्तियों से जाकर रहम लेते थे, हम चैतन्य रूप से ऐसी देवियों को आज यहाँ प्राप्त कर रहे हैं। मैं चाहूंगी आदरणीय प्रभा दीदी जी आज के दिन की हम सबको शुभकामनाएं प्रदान करें।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज की इस अनोखी सभा को देखकर ऐसे लग रहा है जैसे कि आप सभी परमपिता परमात्मा की प्यारी प्यारी संतानें, परमपिता परमात्मा का वर्षा प्राप्त करने के लिए अपने ही घर में पहुंचे। परमात्मा के लिए हम सभी यही कहते हैं कि परमात्मा सभी आत्माओं का मात पिता है, उसको मात पिता मानते हैं। कहावत में भी कहते हैं, तुम ही हो माता, तुम ही पिता हो, तुम ही हो बंधु, सखा तुम ही हो। तो वो हमारा मात पिता है और हम सब उस परम पिता परमात्मा की संतानें हैं। हम सब भगवान के बच्चे हैं, है ना? अब भगवान के बच्चे हम सभी हैं, लेकिन भगवान के बच्चे हम कभी अपने को समझते कहते हैं भगवान के बच्चे हैं। आज किसी को भी परिचय देते हैं तो कौन सा परिचय देते हैं, हम फलाने फलाने हैं, हमारा नाम ये है, हमारा पिता ये है, सरनेम ये है, स्थान ये है। लेकिन वास्तव में जो हम सबका पिता है और हम सब उसकी संतानें हैं, वो कभी हम अपने को समझते नहीं। तो जब परम पिता परमात्मा हम सबका पिता है तो परमात्मा की जो महिमा गाते हैं कि परमात्मा जो है उसका वर्षा या प्रॉपर्टी, हम यही कहेंगे कि परमात्मा से आत्माओं को क्या मिलता है। हर एक आत्मा परमात्मा से यही चाहती है कि हमें सुख और शांति मिले, परमात्मा से ही सुख और शांति की चाहना रखते हैं। तो सुख शांति का देने वाला दाता वो परम पिता परमात्मा है। तो हम सब उनकी संतानें हैं। जब भगवान के हम बच्चे हैं और भगवान के बच्चों के पास क्या होना चाहिए, परमात्मा का वर्षा प्रॉपर्टी अधिकार होना चाहिए। लेकिन आज हम सभी अपने जीवन के अंदर क्या मांगते हैं, है? मनुष्य के पास आज सब प्रकार के भौतिक साधन हैं, लेकिन सब कुछ होते हुए भी हर एक व्यक्ति यही कहता है कि हमें सुख और शांति चाहिए, शांति चाहिए, पीस चाहिए। जीवन में शांति नहीं है, जो आप सबने यहाँ आकर के अनुभव किया होगा, कहा ना यहाँ बहुत शांति का वातावरण है। तो जीवन में शांति, ये शांति हम सबका स्वधर्म है और वो ही स्वधर्म हमसे भूल गया है। तो कैसे हम अपने जीवन को सुख में बनाएं, शांति में बनाएं, क्योंकि हम सबको ये जीवन बहुत सुंदर मिला हुआ है। जैसे हमारे आदिति बहन ने कहा कि मेरे को यहाँ क्या मिला, अपने से मैंने बातें की। तो अपने से बातें हम करते, अपना जो आत्मा को हमें जो स्वधर्म है हमारा शांति, वो शांति की खोज सदैव रहती। तो हम कैसे अपने जीवन के अंदर शांति प्राप्त करें, शांति हमारा स्वधर्म है, तो शांति हमारे जीवन का आधार है। तो हम अपना जीवन ऐसा श्रेष्ठ बनाएं जो हमारा जीवन शांत में रहे, हमारा जीवन श्रेष्ठ बने, क्योंकि हर व्यक्ति यही चाहता है कि हमारा जीवन श्रेष्ठ बने। तो श्रेष्ठ जीवन का आधार जो है वो जीवन में शांति और सुख, और सुख और शांति कब मिलेगी, जब हम सभी जो सुख और शांति का दाता है, देने वाला है, उसके साथ हम जब संबंध रखेंगे तब हमारे जीवन में सुख और शांति आएगी। आप सब कहेंगे संबंध तो रखते हैं, हाँ संबंध रखते हैं, लेकिन संबंध संबंध रखने में अंतर होता है ना। कहते हैं ना, एक क्लोज संबंध होता है, एक दूर का संबंध होता है, नजदीक का संबंध, ये मेरा नजदीक का है। तो जब नजदीक का संबंध होता है तो जीवन में सुकून मिलता है। तो इसी प्रकार परमात्मा से भी अब हमारा जो संबंध है वो नजदीक का संबंध जोड़ना है। जितना उससे हम नजदीक का संबंध जोड़ेंगे उतना हमारे जीवन के अंदर सुख और शांति आएगी। तो वो सुख शांति प्राप्त करने के लिए विशेष, हाँ, कुछ पाने के लिए आप सभी यहाँ पर आए हैं, है ना। तो जरूर मैं ये चाहेंगी कि आप यहाँ से अपने को हर रीति से भरपूर करके आए। इस जो कॉम्प्लेक्स है इसका नाम है ज्ञान सरोवर, है ना? क्या नाम है? ज्ञान सरोवर। तो ज्ञान सरोवर में कहते हैं सरोवर में सागर में डुबकी लगाने से रतन मिलते हैं। जितना सागर की गहराई में जाएंगे उतने रत्न मिलेंगे। तो इसी प्रकार यहाँ भी आप जितना इस ज्ञान की गहराई में जाएंगे उतने आप रत्नों से अपने जीवन को भरपूर करेंगे। और मैं ही आशा रखती हूँ कि जरूर आप अपने जीवन को भरपूर करके यहाँ से जाएंगे। आप सबका विशेष ज्ञान सरोवर में वेलकम है, स्वागत है, स्वागत है। ओम शांति।
दीदी आपका भी बहुत 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 धन्यवाद। सच में ही हम आपके इन शब्दों को बहुत अपनी बुद्धि में रख कर सरोवर में डुबकी लगाएंगे ही और एक ना एक रत्न तो लेकर जाएंगे ही। अब हमारे मध्य आदरणीय चक्रधारी दीदी जी जो होस्ट भी हैं हमारे ही, क्योंकि जब से ये संकल्प उठा है आप सबको बुलाने का तब से ही दीदी भी इस यात्रा में हमारे साथ शामिल हैं, सूक्ष्म में हैं और आज साकार में दिल्ली से हमारे मध्य पहुंची हैं। आपके विषय में मैं आपका परिचय देते हुए, वैसे तो सूर्य को दीपक दिखाने वाली बात है लेकिन फिर भी मैं आपके परिचय में कहूंगी, दिव्य गुणों की प्रतिमूर्ति राजयोगिनी आदरणीय चक्रधारी दीदी जी। आपने अपनी लौकिक पढ़ाई दिल्ली आईपी कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन कंप्लीट करी और 1960 में आपने अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की सेवाओं के लिए। आप रशिया एवं बाल्टिक कंट्रीज में भी जाकर अपनी ईश्वरीय सेवाओं से अनेक आत्माओं को जीवन जीने की कला और वो जो संस्कृति है सात्विकता की, वो आपने एक एक आत्मा में इसका लाभ क्या है वो करके अपने जीवन से प्रदर्शित किया, प्रेरणाएं दी। वर्तमान में ब्रह्मा कुमारी इसके बहुत सारे विंग्स बने हुए हैं, प्रोफेशनली अलग अलग विंग से हर कोई जुड़ता है। आप विमेन विंग के चेयरपर्सन हैं। विश्व के नव निर्माण अर्थ राजयोग की जो शिक्षा जिससे जन जन लाभान्वित होता है, अपने जीवन को मूल्यों से सजाता है, आप आपकी वाणी के द्वारा, उस माधुर्यता के द्वारा और इतनी सरलता और सहजता भी आप सुनेंगे तो खुद ही अनुभव करेंगे। आप ऐसा हर आत्मा को वो जग देते हैं जिसको कहते हैं ना, वो एक ऐसी चीज ड्रॉप मिलता है जो लगता है सीप में मोती पड़ गया हो। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी, आप दीदी से शुभकामनाएं प्राप्त करेंगे। दीदी जी
ओम शांति। आज मैं सोच रही हूँ कि वैसे तो इस प्रांगण में हमने बहुतों को निमंत्रण दिया और बहुत आत्माएं आई और लाभान्वित हुई, लेकिन आज अदिति बहन और सुधीर भाई के निमंत्रण पर मैं भी यहाँ आपके साथ आई हूँ, इसलिए आज मैं आमंत्रित मेहमान हूँ। हाँ, इन्होंने ये कहा कि मेहमान के साथ साथ मैं होस्ट भी हूँ, गेस्ट भी हूँ, बहुत अच्छी बात है। कभी होस्ट बनने में आनंद आता है तो कभी गेस्ट बनने में भी आनंद आता है। तो अदिति बहन ने ना केवल यहाँ बुलाया लेकिन दिल्ली में हमारा कैंपस ORC में जो बना हुआ है उसमें भी आपने अपने बर्थडे, दोनों ने जब बर्थडे अपना मनाया तब आपने बहुत से अपने दूर नजदीक के संबंधों को बुलाया था और बहुत सुंदर रूप से उन सब की दैवी पालना की थी। और अब यहाँ आप सबको बुलाने का तात्पर्य केवल यही है कि जहाँ अपनापन होता है, जो चीज मुझे अच्छी लगती है, दिल होता है, मैं सब अपनों को दे दूँ। ये उनका दिल अपनों को देने का मैं समझती हूँ बहुत श्रेष्ठ दिल है। और मैं कई बार कहती हूँ क्लास में, ये पहला ही युगल रूप रतन है जिन्होंने अपने संबंध वालों को सर्वप्रथम इस ज्ञान से परिचित कराने का बीड़ा उठाया। ये आवश्यक भी है, अच्छी चीज अपने तक सीमित रख लेना ही काफी नहीं है, अच्छी चीज को सब तक पहुंचाना भी हमारा फर्ज है। जब मैं रूस देश में गई तो टेलीविजन वाले इंटरव्यू लेने के लिए आए, एक टेलीविजन वाला मेरे से पूछता है क्या आपने क्या भारतवासियों को ये ज्ञान दे दिया है जो आप अब हमारे देश में ये ज्ञान देने के लिए आए हैं। उस समय मेरे को विचार तो आया, सेकंड में मैंने उन्हें उत्तर दिया, आध्यात्मिक लोगों के लिए मेरा देश और तेरा देश नहीं होता, आध्यात्मिक लोगों के लिए सारा विश्व हमारा अपना घर होता है। घर के भिन्न कमरे होते हैं, एक ही कमरे में नहीं भिन्न कमरों में जाएं, अपने परिवार से मिलें। मैं तो अपने परिवार से मिलने के लिए यहाँ आई हूँ और बहुत ही स्नेह और प्यार से उन्होंने हमारा सत्कार किया। उस समय कम्युनिज्म था, गर्बाचोव ही प्रेसिडेंट थे जब हमारा जाना हुआ, और हमको ये पता चल चुका था कि कम्युनिज्म में आध्यात्मिकता को सुनने के लिए लोग विशाल हृदय नहीं है, और यहाँ तक कह डाला है कि एक अफीमची और धार्मिक या आध्यात्मिक लोग एक बराबर होते, जैसे अफीमची अफीम के नशे में पड़ा रहता है ऐसे आध्यात्मिक लोग भी होते। इसकी मिसअंडरस्टैंडिंग ठीक करने के लिए मैं कहूंगी हमारा बहुत दिल हुआ। लेकिन जाने से पूर्व मुझे ये विचार आया कि वहां जाके करूंगे क्या, क्योंकि हमसे पूर्व हरे कृष्ण हरे रामा वाले वहां जा चुके थे और पता चला कि लगभग 6 वर्ष तक उन्हें जेल में रखा गया था क्योंकि भगवान का नाम लेना वहां निषेध। और मैंने अपने आंखों से भी देखा कि कोई चर्च, कोई मंदिर, कोई गुरुद्वारा वहां कोई भी वर्किंग कंडीशन में नहीं था, यहां तक कि उनकी दीवारों को भी छील छील करके कोई निशान भी यहां आध्यात्मिक या धर्म का ना रहे, इस प्रकार की वहां दशा थी। और गवर्नमेंट ने ऐसे स्थलों को, जो चर्च हो या किसी प्रकार का भी धार्मिक स्थल हो, उसको अपने स्टोर हाउसेस बनाया हुआ था, लेकिन लोगों को रहने के लिए फ्री मकान था, बिजली फ्री थी, पानी फ्री था, आने जाने का साधन फ्री था, और फोन आदि बहुत कम खर्च, नहीं तो जहां तहां फोन लगे हुए होते थे, आप कहीं से भी फोन कर सकते हैं, हर चीज अवेलेबल थी जो लोगों को चाहिए। और उस समय लगभग 8 रूबल में 50 लोगों को आमंत्रित करके आप अच्छी तरह उनकी पार्टी कर सकते हो, जूस पिला सकते हो, वैरायटी प्रकार का, इस कदर वहां की दुनिया थी। लेकिन एक मनुष्य के चेहरे पर भी खुशी नहीं थी, हर एक के चेहरे में इस प्रकार निराशा थी कि जैसे इनका कुछ खो चुका हो। ये दृश्य देखकर मुझे भी कुछ आश्चर्य हुआ और मुझे ये पता चला कि गोर्बाचोव ने पेरेस्ट्रोइका के द्वारा लोगों को थोड़ी स्वतंत्रता धार्मिकता की या आध्यात्मिकता की दी थी। मैं उस समय पहुंची जो कि मुझे नहीं मालूम था, लेकिन ये कहूंगी कि जहां भी लेक्चर का प्रोग्राम होता था, 1000-2000 का हॉल है तो फुल हॉल होते थे, और यहाँ तक कि उतनी संख्या बाहर खड़ी होती थी ये कहने के लिए प्लीज हमको भी अंदर ले चाहिए, बहुत सुनने के लिए इच्छुक आत्माएं थी। लेकिन जहां तहां पर लेक्चर्स वगैरह हुए, प्रोग्राम हुए, और वहां ऐसा भी नहीं कि जहां जाइए आप अपना सेवा केंद्र स्थापित कर दो, हर चीज गवर्नमेंट के अंडर थी। लेकिन हमने भी प्यारे बाबा का एक सेवा स्थल किसी विज्ञान के इंस्टीट्यूट के अंतर्गत योगा इंस्टीट्यूट के नाम से खोला और रजिस्टर्ड हुआ, वहां पर अपनी बहनों को रखा गया और सेंटर की स्थापना हुई। ये सोच नहीं सकते थे कि कभी यहां भी ब्रांच खुल जाएगी। आज वहां लगभग 72 सेवा केंद्र और सब सेंटर जो प्रीवियस यूएसएसआर कहलाता है वहां पर ये सेंटर्स चलते हैं। अब तो वहां पर कम्युनिज्म नहीं है लेकिन लोग तो वही हैं, टाइटल बदल गया है। लेकिन वहां की कंडीशन क्या थी? कंडीशन ये थी कि महिलाएं चाहे काम पुरुषों से भी ज्यादा करती थी लेकिन महिलाओं की कंडीशन बहुत डाउन थी। और यहां तक स्थिति आ चुकी थी कि हमारी इंटरप्रेटर एक बार हमसे पूछती है कि दीदी मैं अपने पति से थोड़ी पड़ी हुई ज्यादा और ब्यूटीफुल भी हूं, लेकिन मेरा पति मेरे ऑफिस से आने से पहले मेरा टेबल तैयार करता है और मेरे कपड़े प्रेस करके हैंग करता है, हर प्रकार की मेरी सेवा में बहुत सहयोगी, लेकिन मैं उनसे डाइवोर्स लेना चाहती हूं। मैंने कहा क्यों? कहा दीदी आपको मालूम है 15 वर्ष से मैं एक ही हस्बैंड के साथ रही हुई हूं, 15 ईयर्स हो चुके। मुझे सुनकर आश्चर्य हुआ, धन्य है भारत की नारी जिसके मुख से यही शब्द सुनते कि अगर मेरी अर्थी भी निकले तो मेरे पति के कंधों पर मेरी अर्थी उठनी चाहिए। लेकिन आज ये भी देश है कि 15 वर्ष रहना भी उनको भारी लग रहा है। हम वहां पर ये ज्ञान और योग की शिक्षा दी, लोगों ने बहुत सुंदर रूप से अपनाया और मैंने नहीं देखा अपने इस 32-33 वर्ष के काल में कि किसी ने ऐसे डाइवोर्स भी लिया। लेकिन आज बड़ा अफसोस आता है कि हमारे भारत की इतनी ऊंची संस्कृति कहां गई, वो संस्कृति। मैं एक बात सुना रही थी, किसी ने कहा कि शादी की है, 6 मास हो चुके हैं, बहू घर में आई हुई है, सास सारा काम करती है लेकिन बहू हाथ नहीं लगाती है क्योंकि उसने शिक्षा ये ली है ये काम तो मेट्स भी कर सकती हैं, ये काम मुझे नहीं करना। एक बार सास ने अपनी बेटी के कहा बेटा बहू को कहो कि थोड़ा बहुत हाथ बटा लिया करे। उसने कहा मम्मी मैं डायरेक्ट तो नहीं कह सकता, ऐसा होगा कि मैं अपने कमरे में बैठा हूं और वो भी मेरे साथ बैठी हो तो आप झाड़ू लगाने आना तो मैं कहूंगा कि मैं झाड़ू लगाऊंगा, आप कहना मैं झाड़ू लगाऊंगी, हो सकता है उसको कुछ विचार आ जाए। तो झाड़ू लेकर जब आई तो बेटे ने कहा मम्मी छोड़ो मेरे कमरे में मैं झाड़ू लगाऊंगा। कहा नहीं बेटा तू क्यों लगाएगा, मैं लगाऊंगी। कहा नहीं नहीं मम्मी मैं लगाऊंगा। थोड़ा आपस में ये बात में मैं लगाऊंगा। जब पत्नी ने सुना तो कहा झगड़ा किस बात का करते हो, एक दिन आप लगा लेना एक दिन मम्मी लगा लेगी, इसमें क्या जाता है। आप सोचिए क्या भारत की संस्कृति थी और कहां जा रही है। आज कई समझते हैं शायद ब्रह्मा कुमारी किसी नए धर्म की स्थापना कर रहे हैं, लेकिन हम सबको बताना चाहते हैं नए धर्म की स्थापना नहीं है। इस विद्यालय का लक्ष्य है हे नर तो श्री नारायण कैसे बन और हे नारी तो श्री लक्ष्मी कैसे बन। आज शादी करके घर में कन्या आती है और फौरन कहते हैं, आपने सुना लक्ष्मी आई है, लेकिन दिवाली के दिन तो मिट्टी की लक्ष्मी आती है, कागज पर लक्ष्मी आती है, घर की लक्ष्मी का तो कोई पूजन नहीं करता है। क्योंकि लक्ष्मी को लाने वाला भी तो नारायण है। जब प्राणी में वो लक्षण ही नहीं रहे तो कहां वो लक्ष्मी नारायण की दुनिया होगी। आज बड़ा फेमस है कि हमारा भारत सिरताज होगा। सिरताज कैसे होगा जब तक नैतिकता का सुधार नहीं होगा, चरित्र ऊंचा नहीं होगा। तो हम जन जन को यही संदेश देते हैं, जिन देवी देवताओं की पूजा करते हो वो देवी देवता वास्तव में हमारे आदि के महान वो आत्माएं हैं जिनको हमें फॉलो करना है। वे भी मनुष्य थे, दो हाथ दो पांव वाले, प्रवृत्ति में रहने वाले थे, लेकिन आज प्रवृत्ति क्या हो चुकी है। गृहस्थ जिसको आश्रम कहते हैं, आज आश्रम अलग बन चुके हैं, गृहस्थी अलग बन चुकी। कारण क्या है? क्योंकि आज वो आश्रम के गुण नहीं रहे। तो यहाँ ये सब चीजें सिखाई जाती हैं, समझाई जाती हैं, सुनाई जाती हैं। दो संस्कार मिलाने की कोशिश करे, पंडित जी शादी करते हैं, गन मिला मिला के शादी करते, फिर भी झगड़ा तो होता है। दो एक्टर एक जैसे नहीं हो सकते, कहीं समाने की जरूरत पड़ती है, कहीं किसी बात में सामना करने की जरूरत पड़ती है, कहीं झुकना भी पड़ता है, कहीं अपने आप को मिलाना भी पड़ता है। लेकिन आज मनुष्य में गुणों का ह्रास हो चुका है, और जब गुण नहीं रहे तो हम समझ सकते हैं ये संसार देव भूमि कैसे बनेगा। और जब तक मनुष्य में दिव्यता नहीं, संसार में सुख और शांति कहाँ से आएगी। तो ये पूरे विश्वविद्यालय में जो स्टडी होती है, देश और विदेश में यही स्टडी होती है कि हम अपने जीवन को दिव्य और श्रेष्ठ कैसे बनाएं। घर का दोष नहीं है कि घर को छोड़ो जंगल में चले जाओ, या घर को छोड़ो तो पति पत्नी जुदा हो जाओ। अरे जुदा कैसे हो सकते हो, सामाजिक प्राणी या मनुष्य समाज में रहता है। आज घर वालों से कनेक्शन नहीं तो दूध वाले सब्जी वाले से कनेक्शन जरूरी है, किसी ना किसी के संबंध में चलोगे। इसलिए आप सबको मैं ऐसा समझती हूँ कि अदिति बहन सुधीर भ्राता जी ने अपनों को आज आमंत्रित किया, जिसकी हमें भी खुशी है कि आप उस भारत की प्राचीन संस्कृति क्या थी, जिसकी मैं समझती हूँ आज आप क्लास भी सुनेंगे, और पुनः वो दैवी संस्कृति जीवन में कैसे लाएं, और घर परिवार में रहते हुए भिन्न संस्कार स्वभाव होते हुए भी हम एक दो को समा कर, एकजुट होकर कैसे प्यार और प्रेम से जीवन की नैया को आगे बढ़ाएं, यही इस विद्यालय में सिखाया जाता है। कई लोग बोलते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं, यहाँ जाओगे तो ब्रह्मा कुमारियां भाई बहन बना देंगी, घर छोड़ा देंगी। हमने तो अपने जीवन काल में किसी को घर छोड़ते देखा नहीं। हमारे भी मम्मी पापा ज्ञान में पहले आए थे, हम छोटे थे भी स्कूलों में पढ़ते थे, वो ही पहले आए थे, उनको देख के तो हम बच्चे भी आए। आज मुझे भी लगभग 62 इयर्स हो चुके हैं इस विद्यालय में रहते हुए, पढ़ाई पूरी करके 62 में समर्पित हुई थी, और मुझे देखने में आया कि सचमुच घर जो गरीब कहलाते थे, आज हम किसी को गरीब नहीं कहते, किसी को अनपढ़ा नहीं कहते। पढ़ाई लिखाई डिग्री से नहीं होती है, जीवन की नैतिकता चरित्र से होती है, और यही यहाँ सिखाया जाए। हाँ, ये जरूरी है कि आने वाले वैरायटी, एक स्कूल में स्कॉलरशिप लेने वाला भी होता है बच्चा, और फेल हो जाने वाला भी होता है, और अगर कोई किसी फेल होने वाले को देखता रहे तो पढ़ाई नहीं पढ़ सकता। इसलिए आप यहाँ आए हैं, मैं समझती इस स्थल की गतिविधियों को जानेंगे और अपनी प्राचीन संस्कृति को पहचान कर अपने घर को सुंदर आश्रम बना पाएंगे। ओम शांति। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका यहाँ।
दीदी, दीदी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और सच में ही हम आपसे भी प्रॉमिस करते हैं कि हम यहाँ से जाने के बाद वो आश्रम जैसी प्यूरिटी घर में नहीं तो कम से कम इस शरीर रूपी घर में तो लाना शुरू करेंगे और अपने को उस करनी पर ध्यान देकर देवतुल्य बनाएंगे। आशीर्वाद का एक और खजाना खुलने जा रहा है हमारे बीच में। त्याग मूर्त आदरणीय रजनी दीदी जी जो जापान से हमारे बीच में है, सच में ही ये रिट्रीट इंटरनेशनल रिट्रीट बन रही है। आप भी कुछ विदेश से आए हैं, हमारे बीच में भी आदरणीय रजनी दीदी जी हैं जो बचपन से ही इस विश्वविद्यालय के संपर्क में आए। यहाँ के साकार संस्थापक जो प्रजापिता ब्रह्मा हैं, आप उनकी भी बाल्यकाल से ही आपने उनसे मिलन मनाया, वो वाइब्रेशंस ले लिए, भगवान की नजर आप पर उस उम्र में पड़ गई थी, तो आप सोचिए वो मूर्ति कितनी सुंदर तैयार हुई है। 48 वर्षों से भी ज्यादा समय से आप अपनी समर्पित जीवन यात्रा हम सब अनेक लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए सेवाओं में तत्पर रही हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही आपने बैचलर्स ऑफ आर्ट्स कंप्लीट किया, उसके बाद आपने अपना सर्वस्व समर्पित किया इस ईश्वरीय सेवा में। आप बहुत सारे स्थानों पर जाकर अपनी खुशबू बखेरती रही और शुरुआत सेवाओं की आपकी दिल्ली से ही हुई थी। तो प्रथम आप दिल्ली में सेवाओं पर रहे, फिर वहां से लंदन, न्यूयॉर्क, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बहुत से स्थानों पर आपका जाना हुआ, अनेक आत्माओं की ज्योति जगाना आपके द्वारा हुआ और अभी वर्तमान समय आप नेशनल कोऑर्डिनेटर है फिलीपींस और जापान के। आपके द्वारा हमको वो एंथुजियाज्म दिखता है, चलते फिरते भी ऐसा लगता है कि हर एक में वो करंट भेज रही हैं और आपकी बोली से भी अभी जैसे आप सुनेंगे आशीर्वचन लेंगे तो प्रेरणाएं मिलती हैं, सुनते हैं तो लगता है कि अभी ही कर डालें। ऐसी त्याग तपस्या की मुहूर्त आदरणीय रजनी दीदी जी से हम सभी शुभकामनाएं लेंगे। आदरणीय दीदी,
थैंक यू। ओम शांति। तो जब मैं बहुत छोटी थी तो हम अपने घर में देखते थे, हमारी मदर वो बहुत गुस्सा करती थी क्योंकि हम 5 भाई बहन थे। तो हमारी जो आंटी थी उन्होंने बोला हमारी मदर को कि आप अपने ऊपर कंट्रोल करो क्योंकि बच्चों को पालना है। तो उसने कहा कैसे? कहा मेडिटेशन सीखो। उन्होंने ये राजयोग मेडिटेशन सीखा, उसके बाद उसके जीवन में बहुत शांति आई। तो वो बहुत प्यार से अभी हम लोगों को हैंडल करती थी। तो मैंने देखा कि इसका जीवन अच्छा हो गया। तो मैं छोटी थी, मैंने कहा आप कहाँ जाते हो? उन्होंने कहा कि मैं मेडिटेशन सीखती हूँ। तो मैंने कहा बच्चे भी सीख सकते हैं? कहा हाँ। तब से मैंने भी सीखना शुरू किया क्योंकि बचपन से सीखते हैं तो इतना मुश्किल नहीं है क्योंकि आदतें ठीक बनती हैं, जैसे दीदी बता रहे थे चरित्र अच्छा बनता है। तो उस सीखते सीखते साथ में फिर मैंने ट्रेनिंग ली और उसके बाद मैंने भी अपने जीवन में लक्ष्य रखा कि सेवा करनी है। तो अभी तो मैं जापान में हूँ। जापान में तो आपको पता ही है बुद्धिस्ट कंट्री है, भगवान को नहीं मानते हैं, जैसे रशिया में पहले दीदी ने बताया। तो वहां पर भी हमारे जो वाइब्रेशंस होते हैं, हमारी जो अंदर की एटीट्यूड है और हमारा जो व्यवहार है और उस जो प्रकंपन हमारे बनते हैं, जो हम मन में सोचते हैं उसके प्रकंपन बनते हैं, वो लोग फील करते हैं। हम प्रैक्टिकल कहें कि भगवान है नहीं मानते, वो कहते हैं भगवान है लेकिन उसका प्रैक्टिकल वाइब्रेशन क्या होगा वो हमको फील होना चाहिए, तब हम मानेंगे भगवान है। तो उस वहां पर हमारे जो सेवाएं चलती हैं वो ये प्रैक्टिकल, हम वातावरण बनाएं, शुद्ध वातावरण, शुभ वातावरण और पॉजिटिव वातावरण, और हमारे मन के जो सोच है उससे हमारी एनर्जी बनती है, प्रकंपन बनते हैं, वो फील करते हैं। तो हमने देखा कि उसके कारण ही लोग आते हैं कि यहाँ बहुत पॉजिटिविटी है। दूसरा, मैंने ये देखा था, क्योंकि काम करते हैं सुबह से शाम, मंडे से संडे, वो जैसे नहीं घर में कोई प्यार नहीं है। तो जैसे दीदी बता रहे थे, ये हमारा परिवार है, तो वो सेंटर पे आते हैं, उनको परिवार की वासना आती है। तीसरी बात यहाँ पर ये अनुभव कराई जाती है वो है कम्युनिकेशन, कि हम एक दूसरे के साथ कैसे कम्युनिकेट करें, हल्के रहें, नेचुरल रहें, क्योंकि वहां पर ये थोड़ी सी मुश्किल पड़ती है उनके कल्चर में। तो देखा जाता है कि ये देश इतनी मेटेरियलिस्टिकली बहुत ऊंचे हैं, टेक्नोलॉजी भी, भौतिक सिस्टम भी पीक पर है, लेकिन खुशी गायब है, स्ट्रेस बहुत है, क्योंकि हर बात को उनको एक्यूरेट करना होता है। तो वो स्ट्रेस के कारण ये मेडिटेशन सीखते हैं, क्योंकि उनको वहां से शांति मिलती है, तनाव से दूर होते हैं। तो ये राजयोग मेडिटेशन जो हमने सीखा अपने जीवन में, और जो सीखते हैं, हमने देखा कि उनको भी जैसे मन में अंदर का सुख मिलता है। आदिति बहन बता रहे थे कि जैसे हम यहाँ आए हैं और हमारा टॉपिक कितना सुंदर है, इनर ब्यूटी, रियली हमको अंदर का ये सुख, अंदर की ये शांति, अंदर की स्थिरता, ठहराव, वो अनुभव करके जाना है यहाँ से। क्योंकि देखो हमारा माइंड तो चलता रहेगा, चाहे घर चलाओ चाहो, चाहे कारोबार चलाओ, यहाँ कुछ नहीं आपको करना, खाना पीना मिल जाना है, नहीं कुछ नहीं करना, लेकिन आप क्या यहाँ पर लेने आए हैं, वो ठहराव, वो जो मन के विचार होते हैं, चलते रहते हैं, उसमें स्थिरता आ जाए, उसी को हम योग कहते हैं, मन की शांति कहते हैं, सुख कहते हैं, जब मन स्थिति में आ जाए। तो मैं समझती हूँ कि आप जितने भी दिन यहाँ हैं, आप अपने अंदर ही देखते रहना कि कौन से विचार चल रहे हैं मेरे अंदर, कहाँ जा रहा है मेरा मन। तीन दिन के लिए आप अपना घर तो भूल ही जाना, क्योंकि घर सब ठीक चलता रहेगा, क्योंकि आपके मन के विचार ठीक हैं, उनको वो सुख मिलता रहेगा जो आपको सुख मिल रहा है, आपके प्रकंपन वहां तक भी जाते रहेंगे, आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, ऐसा है ये योग। तो इसलिए यहाँ पर रहते हुए अपनी अंदर की जो ब्यूटी है, सुंदरता है, वो है मन के विचार शुद्ध, शुभ, पॉजिटिव, और उससे बनने वाले प्रकंपन एकदम स्थिरता वाले, यही है। चाहे आप गार्डन में जाओ, ये अनुभव करना है, आप खाना खा रहे हो, ये अनुभव करना है, आप एक दूसरे को मिल रहे हो, ये अनुभव करना है। जितना आप एक्यूमुलेट कर सको इस एकाग्रता की शक्ति को, इस स्थिरता को, वो आपकी एक प्रॉपर्टी है, आपकी ताकत है, जो आपको निर्णय शक्ति, जो भी आपके जीवन में समस्याएं आएंगी उसको आप निर्णय कर सकेंगे। तो इसलिए ये राजयोग, जैसे हम कहते हैं ना, कस्तूरी है, बहुत 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 बढ़िया चीज है। जब आप इसको समझ जाएंगे तो बहुत अंदर की जो इनर ब्यूटी, हमारी शक्तियां हैं, वो सब जागृत हो जाएंगी, जिसके कारण हमारा जीवन अपने लिए भी, परिवार के लिए भी, देश के लिए भी, संसार के लिए भी बहुत सुखमय बन जाता है। तो मैं समझती हूँ आप बहुत भाग्यवान हैं, आप समझते हैं सभी है? फीलिंग्स आ रही है कि इतना बिजी होते हुए भी ये तीन दिन हमको मिले हैं, बहुत भाग्य की निशानी है कि निकल के आना इतने कारोबार से, नहीं तो इंसान फंसा रहता है। यहाँ निकल के आना, यहाँ के वाइब्रेशंस को फील करना, ये भी एक बहुत बड़ा भाग्य है, आप रियलाइज करेंगे। तो यहाँ पर रहते हुए आप अपनी कमाई बैग भर भर के जाना, जैसे करते हैं ना शॉपिंग मॉल में जाते हैं, कितना सामान ले आते हैं, तो आप तीन दिन में बहुत कुछ लेके जाना, आप लिस्ट बना लेना क्या क्या लेना है, और यहाँ तो तैयार है, और आपको खाली फील करना है बस, यू अलाउ योर सेल्फ टू फील। इतना अच्छा है मन, मन एक यंत्र है, इसके द्वारा आप बहुत कुछ फील कर सकते हो, चिंता भी, ठहराव भी, दुख भी, सुख भी, शांति भी, अशांति भी, और यहां पर हमको सब पॉजिटिव फील करना है। तो ये मेरी एक गुड विश है आप सबके लिए, और इस प्रोग्राम में आप आए हैं, स्वागत भी है। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रजनी दीदी जी का भी। सच में ही ये दीदियां जिनको हम सुन रहे हैं, ये वो गुलाब है जिसको देखते ही चेहरा अपने आप मुस्कुराता है। ये अगरबत्ती की वो खुशबू है जो कहीं से भी गुजर रहे हो दूर से ही हमारे पास पहुंच जाती है। ये दीदियां शिक्षा नहीं देती हैं, लेकिन ये हमें दिशा देती हैं कि हम अपने चरित्र का कैसे उत्थान करें। ऐसी आदरणीय दीदियों का हमारे सम्मुख आना और अनमोल महावाक्यों के द्वारा हमें शुभकामनाएं प्रदान करना हमारा भी सौभाग्य है। और ऐसी रचना को तैयार करने वाला वो रचयिता, उस परमात्मा का भी हम दिल से धन्यवाद करेंगे। 2 मिनट परमात्मा स्मृति में बैठकर इसको हम जो वेलकम सेशन है उसको समाप्त करते हैं और नेक्स्ट सेशन के लिए रेडी होते हैं। 2 मिनट परमात्मा का थैंक्स करेंगे।